आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
आज के संक्षिप्त समाचार वैशाली जैन के साथ। बड़ी खबर में प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी ने इस बात से इनकार कर दिया है कि ऑकस रक्षा समझौता किसी प्रकार के खतरे में है। 2021 में हुए इस समझौते के तहत यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ऑस्ट्रेलिया को परमाणु संचालित पनडुब्बियां उपलब्ध कराएंगे और अपनी कुछ परमाणु पनडुब्बियों को ऑस्ट्रेलिया में रोटेशन के आधार पर तैनात भी करेंगे। एक ब्रिटिश संसदीय समिति की रिपोर्ट में कहा गया कि राजनीतिक नेतृत्व में कमी, निवेश में गिरावट और समझौते की शर्तों को पूरा करने की क्षमता को लेकर संदेह के कारण ये डील खतरे में पड़ सकती है। हालांकि प्रधानमंत्री अल्बनीजी का कहना है कि समझौते से जुड़े सभी देश इसके प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। इसी बीच फेडरल विपक्ष का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों ने ऑकस और ऑस्ट्रेलिया अमेरिका गठबंधन के समर्थन को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन इससे ऑस्ट्रेलिया की नीति प्रभावित नहीं होनी चाहिए। कैनबरा में नेशनल प्रेस क्लब में बोलते हुए विपक्ष रक्षा प्रवक्ता जेम्स पैटरसन ने कहा कि सरकार और सेना को देश के सामने मौजूद खतरों के बारे में अधिक खुलकर जानकारी देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऑकस किसी एक अमेरिकी राष्ट्रपति से कहीं बड़ा और अधिक स्थायी भू राजनीतिक समझौता है। और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज संकट से निपटने में जापान के साथ ऑस्ट्रेलिया की साझेदारी अहम भूमिका निभाएगी। वे अपने एशिया दौरे के तहत टोक्यो में अपने जापानी समकक्ष तोशिमित्सु मोतेगी से मिली, जहां ईरान संघर्ष के कारण प्रभावित ईंधन आपूर्ति को सुरक्षित करने पर चर्चा की गई। वॉन्ग ने कहा कि इस मुद्दे पर जापान और ऑस्ट्रेलिया के साझा हित हैं। दूसरी ओर फेडरल सरकार ने न्यूज मीडिया बार्गेनिंग कोड में बड़े बदलावों का प्रस्ताव रखा है, जिसका मकसद ऑस्ट्रेलियाई समाचार संगठनों को बेहतर समर्थन देना है। इन प्रस्तावों के तहत गूगल, टिकटॉक और फेसबुक जैसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को स्थानीय मीडिया संस्थानों के साथ समझौते करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और ऐसा ना करने पर उन पर आर्थिक दंड भी लगाया जा सकता है। संचार मंत्री अनिका वेल्स का कहना है कि संशोधित कोड में सांस्कृतिक और भाषाई रूप से विविध समुदायों यानी कॉल्ड कम्युनिटीज और ग्रामीण व दूर दराज के क्षेत्रों में काम करने वाले मीडिया संगठनों के लिए विशेष प्रावधान भी शामिल हो सकते हैं। सरकार का मानना है कि ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियाई दर्शकों के लिए समाचार तैयार करने वालों को पर्याप्त आर्थिक समर्थन मिलना आवश्यक है। वहीं AFL में रॉस लियोन से जुड़ा एक विवाद अब सुलझ गया है। सेंट किल्डा क्लब के कोच ने कहा कि उनके और टीम के कुछ अबोरिजिनल खिलाड़ियों के बीच का मामला अब समाप्त हो चुका है। सेवन नेटवर्क की एक रिपोर्ट के अनुसार ट्रेनिंग के दौरान एक घटना हुई थी जिसमें लायन ने तीन अबोरिजिनल खिलाड़ियों के आपस में पासिंग को लेकर टिप्पणी की थी, जिससे टीम के अन्य खिलाड़ियों को नजरअंदाज किए जाने का संकेत मिला। इस टिप्पणी से ब्रैडली हिल और नासिया वैंजनीन मिलेरा आहत हुए थे। मामले की शिकायत के बाद स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी कि लायन ने एक समय अपने पद से इस्तीफा देने की पेशकश भी की थी। हालांकि अब क्लब के भीतर बातचीत के साथ इस मुद्दे को सुलझा लिया गया है। और अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। ताइवान सरकार ने ताइवान स्ट्रेट के पैंगहू द्वीपों के पास चाइना के दो युद्ध पोत देखे जाने का बड़ा दावा किया है। हालात पर नजर रखने के लिए ताइवान ने अपनी नौसेना और वायुसेना को तैनात कर दिया है। चाइना लोकतांत्रिक ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और अक्सर अपने युद्ध पोत और लड़ाकू विमान इस क्षेत्र में भेजता रहता है। ताइवान लगातार इस पर आपत्ति जताता रहा है। ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंगते का कहना है कि ये गतिविधियां चाइना की ओर से मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की एक रणनीति का हिस्सा है। ये घटनाक्रम क्षेत्र में बढ़ते तनाव और सुरक्षा चिंताओं को एक बार फिर उजागर कर रहा है। और अंत में खबरें भारत से। भारत में दिल्ली NCR में कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए नमो भारत रैपिड रेल के बाद अब एक और बड़ी परियोजना ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर की तैयारी की जा रही है। ये कॉरिडोर नोएडा और गाजियाबाद को हरियाणा से जोड़ेगा और ट्रेनों की रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक होगी। करीब 270 किलोमीटर लंबा ये नेटवर्क हरियाणा के सोनीपत और कुंडली से शुरू होकर बागपत, हापुड़, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा होते हुए पलवल तक जाएगा। इसे NCR की रिंग रेल के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिससे दिल्ली के बाहर ही यातायात का बड़ा हिस्सा संभाला जा सके। इस परियोजना से गाजियाबाद से जेवर एयरपोर्ट की दूरी घटकर लगभग 45 से 50 मिनट रह जाएगी और इसे रैपिड रेल तथा मेट्रो नेटवर्क से भी जोड़ा जाएगा। नोएडा में बड़े रेलवे स्टेशन की कमी के चलते यात्रियों को होने वाली दिक्कतें इससे कम होंगी, जबकि दिल्ली के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर दबाव घटेगा। इसी के साथ 28 अप्रैल 2026 के संक्षिप्त समाचार यहीं समाप्त होते हैं।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं। Thank you.